सुप्रभात साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आओ संभाले अपनी विरासत अभियान पर आज हमारे साथ रूबरू होने के लिए आ रहे विश्व धरोहर सप्ताह के तहत अमरवाड़ा महाविद्यालय के प्रोफेसर विजय गुरुवे जी। नमस्कार गुरुवे जी।
जी नमस्कार दिनकर जी।
छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर इस सप्ताह से आओ संभाले हमारी धरोहर अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत हम आपसे जानना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर है जिसे हमें आज बचाने की आवश्यकता है।
जी दिनकर जी, सबसे पहले सभी श्रोताओं को विश्व धरोहर सप्ताह की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और विश्व धरोहर दिवस सप्ताह पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में सर्वप्रथम हम जानें कि धरोहर क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। धरोहर का अर्थ होता है ऐतिहासिक अवशेष, प्राचीन स्मारक, एक निश्चित अवधि तक किसी के पास संभालने सहेजने के लिए रखी गई वस्तु या अमानत। वह गुण, वस्तु या विचार जो परंपरा के रूप में हमें पूर्वजों से मिला हो, हमारी थाती, हमारी परंपरा, ये धरोहर मानी जाती है। और छिंदवाड़ा जिले में यदि हम देखें तो धरोहर के क्षेत्र में छिंदवाड़ा समृद्ध माना जाता है। सर्वप्रथम हम बात करें जो हमारा प्राचीनतम मंदिर है गोदड़देव नीलकंठी में, जो आज से 1000 वर्ष पहले राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा स्थापित हुआ था, यह हमारी प्राचीनतम छिंदवाड़ा की धरोहर मानी जा सकती है। यदि हम पातालकोट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा दिनकर जी कि ये 6 मिलियन वर्ष पुरानी धरोहर है। यहाँ का जो क्षेत्र है निश्चित ही यह लिविंग हेरिटेज के अंतर्गत आता है। यहाँ की संस्कृति जो आज भी वहाँ के जनजातीय वर्ग के द्वारा संभाल दी जाती है। हम यदि बात करें पांडुरना के कोटमार मेले की तो यह भी हमारी लिविंग हेरिटेज है, हमारी धरोहर है जो आज भी संभाली जाती है। पांडुरना एवं सावरगांव के बीच में कोटमार मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। साथ ही पुतरी खोह एक स्थल है जो हर्री में स्थित है। यहाँ की रॉक पेंटिंग्स काफी पुरानी मानी जाती है जो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे छिंदवाड़ा जिले में इन सभी संस्कृति को संजोए हुए बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, यहाँ पर हम आदिवासियों से संबंधित धरोहर को संजोए हुए है और पूरे मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर्यटक बादल भोई आदिवासी संग्रहालय को देखने के लिए आते हैं। और हम यदि इस अनुक्रम में आगे बढ़े तो हम कैसे भूलेंगे उस स्थल को जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी, और वह क्षेत्र था हमारे छिंदवाड़ा जिले में लाखनवाड़ी का क्षेत्र, जहाँ जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। विश्वनाथ सालपेकर जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और विंग कमांडर रघुनाथ भोपे जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। निश्चित ही हमारा छिंदवाड़ा जिला पूर्णतः समृद्ध है और यहाँ पर अनेक धरोहर छिंदवाड़ा की भूमि पर स्थापित है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके संरक्षण की पहली जवाबदारी व्यक्ति की होती है। हालांकि प्रशासन और शासन इसके लिए जिम्मेदार है कि वह इसका संरक्षण करे, वह इसकी देखभाल करे, लेकिन यदि हमें धरोहर को बचाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। और यही काम कुछ समाज सेवी संगठनों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जंगल सत्याग्रह का क्षेत्र है लाखनवाड़ी, उसका संरक्षण और उसको उजागर करने का काम कुछ समाज सेवी संगठन के द्वारा किया गया। उसमें पंचीकरण गुरुवे जी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रकाशित किया गया और आप ही के द्वारा दिनकर जी, मैं आपको सभी दर्शकों सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि दिनकर जी का रोल इसमें अहम है। लाखनवाड़ी क्षेत्र को उजागर करने के लिए और छिंदवाड़ा के वासियों को बताने के लिए कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से हुई थी।
गुरु जी,
जी
हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जंगल सत्याग्रह स्थल है वहां
जी।
पर चाले छात्र और एनएसएस ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज भी वह क्षेत्र सिर्फ प्रकाश में आया है लेकिन विकास से कोसों दूर है, इसके पीछे क्या कारण है?
जी दिनकर जी, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि उसमें व्यक्ति का उस व्यक्ति की भूमिका अहम होती है और निश्चित ही व्यक्ति और समाज ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, लेकिन क्या शासन प्रशासन अभी भी जागरूक है इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमने संदेश शासन और सरकार तक पहुंचाया है कि हमारी संस्कृति को हमारे धरोहर को बचाया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, लेकिन समाज सेवी संगठनों के द्वारा सरकार और प्रशासन को अनेक सूचनाएं प्रेषित करने के बाद भी लाखनवाड़ी स्थल को वह स्थान छिंदवाड़ा जिले में नहीं दिया गया जो उसे मिला जाना चाहिए था। हम कहते हैं कि शहादत हमेशा याद रहेंगी, लेकिन यदि उस स्थल को नहीं बचाया गया तो शायद हम उस शहादत को भुला देंगे।
गुरु जी, इस जंगल सत्याग्रह पर जब आप इतिहास संकलन परिषद के सदस्य थे उस समय आपने एक लेख भी लिखा था
जी,
जिसमें कितने लोगों ने भाग लिया था और यह जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, यह भी श्रोताओं को बताने का प्रयास कीजिए।
जी दिनकर जी, ये वह समय था जब गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित था पूरे भारतवर्ष में और नमक कानून को तोड़ा गया था, साबरमती से दांडी तक यात्रा की गई थी और नमक कानून महात्मा गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में कोई समुद्र नहीं है और हम नमक कानून को नहीं तोड़ पाएंगे, तो यह एक सांकेतिक विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए छिंदवाड़ा के क्रांतिकारियों ने, छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने नमक कानून ना तोड़कर जंगल कानून को तोड़ा था। निश्चित ही यह एक सांकेतिक विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ जो छिंदवाड़ा जिले में किया गया, और इसका जो पूरा गढ़ है जंगल सत्याग्रह का, जहां से शुरुआत मानी जाती है, वह पवित्र भूमि रामाकोना थी। रामाकोना में हम देखते हैं कि रामाकोना के आसपास के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सौसर, रामाकोना, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, सभी क्षेत्रों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामाकोना नामक स्थान पर संगठित हुए थे और यही से वह पवित्र यात्रा निकली थी जिसने एक स्वतंत्रता से संबंधित स्थल का निर्माण किया था, वह स्थल था लाखनवाड़ी क्षेत्र।
गुरु जी
जी,
जैसा कि आपने छिंदवाड़ा जिले के प्राय प्राय सभी ऐतिहासिक धरोहर जिसे हम विरासत कहते हैं आपने जानकारी दी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है हमारे बीच, इसकी शुरुआत सौसर क्षेत्र में रामाकोना से हुई और जिसके नाम पर आज भी एकनाथ सृष्टि मेले का आयोजन होता है, इस संबंध में आप हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास कीजिए।
जी दिनकर जी, निश्चित ही आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वारकरी संप्रदाय जिसका पवित्र और आध्यात्मिक नगरी पंढरपुर मानी जाती है, जहां पर विट्ठल स्वामी जी का मंदिर है, विट्ठल स्वामी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और मां रुक्मिणी जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इनके इनका जो स्थल है वो काफी पावन माना गया है। पूरे महाराष्ट्र से सभी वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन हमारी रामाकोना की जो भूमि है जहाँ पर पवित्र कन्हान नदी बहती है और इसी कन्हान नदी पे संत हीरामन और वाताजी महाराज ने रेत से शक्कर बनाई थी और पानी से जो है वह तेल बनाया था, और इस प्रकार से रामाकोना में कहीं ना कहीं जो संत कृपा हुई है और यहाँ से शुरुआत हुई है एकनाथ सृष्टि की, जो निश्चित ही हमारे इस धरोहर में सम्मिलित मानी जा सकती है।
गुरु जी,
जी
जैसा कि आपने बताया कि संत हीरामन महाराज और संत वाताजी महाराज ने कन्हान नदी के रेत की शक्ल और पानी का घी बनाया था
जी।
लेकिन आज भी कन्हान नदी को जो आध्यात्मिक दर्जा मिलना चाहिए, जो धार्मिक दर्जा मिलना चाहिए, वह दर्जा अन्य जगह पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिवाय रामाकोना के। इसके पीछे क्या कारण है?
निश्चित ही दिनकर जी, आपका सवाल सही है। कन्हान नदी का उल्लेख अनेक प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहासकारों की हम लापरवाही कहे या शासन प्रशासन की कहे कि कन्हान नदी को वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जो उसे मिलना जाना था। हम इस संदर्भ में ऐतिहासिक सूत्रों के माध्यम से या इतिहासकारों के माध्यम से इस संदर्भ में प्रयास करेंगे कि हमारे छिंदवाड़ा के संपूर्ण धरोहरों को वह स्थान मिले जो उसे मिला जाना चाहिए था। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी कन्हान नदी उपेक्षित है, हमारा लाखनवाड़ी क्षेत्र उपेक्षित है। हम देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ में भी समाज सेवी संगठनों के द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है। तो आवश्यकता हमें है कि हम प्रशासन पर सामूहिक रूप से दबाव डालें और उनके द्वारा इन सभी धरोहरों को वह स्थान दिलाए जो वह अपनी योग्यता धारण करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका कि आपने विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में से संबंधित आवो संभाले अपनी विरासत अभियान पर अपनी बात कही। छिंदवाड़ा मोबाइल वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है
जी। धन्यवाद दिनकर जी।